हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28 और 29। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते त्वविषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन साधसा स्वधामनि ब्राह्मणीरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा ध्रपुलिंद पुलकश आभीर शुंभा यवनाक सादया इनी च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समी ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनशो दशषोडशात्मकम् सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, श्लोक नंबर 25। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तमसादपि भूतादे विकुर्वाणाद भूनभु तस्य मात्रा गुणशब्दो लिंगं यत् दृष्टुदृश्ययो तस्मादपि भूतादे विकुर्वाणाद भून्नभ तस्य मात्रा गुणशब्दे लिंगं यत् दृष्टदृश्ययो तमसादपि भूतादे विकुर्वाणाद भून्नभ तस्य मात्रा गुणशब्दो लिंगं यत् दृष्टदृश्ययो तस्मात् अपि भूतादे। तस्मात् मतलब मिथ्या अहंकार के अंधकार से, जो मिथ्या अहंकार है उससे। अपि भूतादे, अपि मतलब निश्चय ही, भूतादे मतलब भौतिक तत्वों का। विकुर्वाणात् रूपांतरित के कारण अभूत नभ, अभूत मतलब उत्पन्न हुआ, नभ यानी जो मिथ्या अहंकार है उसी से बाकी जो पांच तत्व हैं वो उत्पन्न होते हैं। और सबसे पहले अभूत क्या उत्पन्न हुआ, नभ। नभ मतलब आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु, आकाश होता है ना, सबसे पहले आकाश यानी खला का उत्पन्न, स्पेस। फिर तस्य मात्रा गुण शब्द, तस्य मतलब उसका, मात्रा मतलब सूक्ष्म रूप, गुण मतलब गुण, शब्द यानी ध्वनि। अब नभ यानी आकाश से क्या होता है, ध्वनि। ये जो जितना भी साउंड होता है ना वो सब स्पेस के कारण है। यदि स्पेस न हो तो साउंड न हो, तो स्पेस से ध्वनि उत्पन्न होती है। लिंगम यानी लक्षण, स्पेस का लक्षण क्या है, ध्वनि। कैसे, यत् दृष्ट दृश्ययो, दृष्ट मतलब दृष्टा यानी नेत्र जो है, दृश्ययो देखिए, नेत्र का जो लक्षण है वो क्या है, वो देख रहा होता है। और आकाश का लक्षण क्या है, उसके कारण हमें श्रवण, शब्द श्रवण होते हैं। अनुवाद देखिए, मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पांच तत्व जिनके नाम आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी है, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। वास्तव में मिथ्या अहंकार न हो ना यदि, तो फिर ये भौतिक जगत भी न हो, भौतिक शरीर भी न हो। मिथ्या अहंकार, एक अहंकार जो है वो ये है कि मैं भगवान का दास हूँ, और दूसरा अहंकार क्या है, मैं दास के अलावा कुछ हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शरीर में माता हो, पिता हो, पुत्र हो। शरीर के पहचान से जो हम पहचान अपनी बनाते हैं ना, वो होता है मिथ्या अहंकार। तो बाकी सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं भौतिक जगत में, वो सब मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना, भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मिथ्या अहंकार तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है, क्योंकि तटस्थ शक्ति सोचती है ना कि मैं मिथ्या, ये जीव तो भगवान की तटस्थ शक्ति है, लेकिन जब इसके ये प्रकृति के अंदर चली जाती है, यानी इस भौतिक शरीर के अंदर आ जाती है, तो इसका जो वास्तविक अहंकार है वो वास्तविक अहंकार कि मैं भगवान का दास हूँ, वो मिथ्या अहंकार यानी मैं भौतिक शरीर हूँ उसमें बदल जाता है और वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्ता जताने का प्रयास करता है। और जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अव्यय उत्पन्न होते हैं, यानी जो जितने भी भौतिक महतत्व क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जीव भोग करना चाहता है, उसी लिए इस सृष्टि का निर्माण होता है। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं। वो दिखने में क्या लगता है कि वो भौतिक वस्तुओं का आधिपत्य प्राप्त करता है, लेकिन वास्तविक में ये सब प्रदान करने वाले तो भगवान हैं। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव जूटे ही भोक्ता बनना चाहता है। मेन बात ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भोक्ता भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति है, वो वास्तव में भोक्ता बनने का प्रयास करता है। और यदि जीव किसी वस्तु से आनंद लेता है तो वो आनंद भी भगवान ही प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जीव भी तो भगवान की शक्ति है। लेकिन ये तरीका गलत है, जीव स्वयं से आनंद प्राप्त करके, जैसे अगर हम खाना खाते हैं, खाना यदि हम मुख से डालें या कान से डालें या आंख से डालें, किसी कहीं से भी डालें, मिलता तो हमारे शरीर को है ना, लेकिन दूसरे किसी जगह से यदि हम खाना अपने पेट के अंदर डालने का प्रयास करेंगे तो कष्ट प्राप्त होगा ना, भले ही वो खाना मिल रहा हमें ही है। उसी तरह से आनंद भगवान ही प्राप्त करें, उसी से जीव की इंद्रिय जीव जो है वो संतुष्ट हो सकता है। जैसे मुख में ही खाना डालने से जीव की सारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मिथ्या अहंकार का यही मूल है कि जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है, असल में भोक्ता भगवान है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होता है, कब? जब जीव मोहग्रस्त हो जाता है और इच्छा करता है कि मैं आनंद प्राप्त करूं, तो भगवान क्या करता है, इस भौतिक जगत में छाया तत्व उत्पन्न कर देता है। और जिस तरह से मृग मरीचिका के पीछे मृग यानी हिरण जो है वो दौड़ता रहता है रेगिस्तान में और उसको लग रहा होता है कि सामने जल है, उससे मुझे पीकर संतुष्टि उत्पन्न होगी, दौड़ता है, ये प्राप्त करूंगा, अभी प्राप्त करूंगा, बस आ गया सुख, आ गया, मिल गया मुझे आनंद मिलने। उसी तरह से जीव भी इस छाया शक्ति के पीछे भाग रहा है, वो सोचता रहता है ये मिल जाएगा आनंद आएगा, ये मिल जाएगा आनंद आएगा, ये मिल जाएगा इसे प्राप्त कर लूंगा आनंद आ जाएगा, इसे प्राप्त कर लूंगा। लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने सोचा हो कि ये मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा और उसे वो वस्तु या व्यक्ति मिल जाए और वो सुखी हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। जिस प्रकार रेगिस्तान में जल की आशा करना मूर्खता है, उसी तरह इस भौतिक जगत में आनंद और सुख की आशा करना मूर्खता है। सुख केवल भगवान के चरणों में है, जीव भगवान से पृथक कभी आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया तामसादपि भूतादे विकुर्माणा दब भून नभ, नभ मन आकाश। तो पहले ध्वनि तन्मात्रा और उसके बाद आकाश तत्व का निर्माण होता है यानी स्पेस। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के जैसा है। जैसे यहाँ पर बताया गया ना तस्य मात्रा गुण शब्दे लिंगम यद दृष्ट दृश्य, जिस तरह से दृश्य आंखों के सामने जो है वो दृश्य होता है, उसी तरह से स्पेस के लिए जो है ना वो ध्वनि है, शब्द है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शब्द स्पेस का, स्पेस जो है वो ध्वनि जो है वो उसका सूक्ष्म तत्व है। ध्वनि माना जो संसार में साउंड है वो किस लिए है, स्पेस है इसलिए है। और ये दृश्य क्यों है, क्योंकि नेत्र है तो दृश्य है। तो यहाँ उनका सूक्ष्म तत्व बताया जा रहा है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है। जैसे किसी भी वस्तु के विषय में मैं बताऊं, मैंगो के बारे में बताऊं, तो मैं बताऊंगी कैसे कि मैंगो येलो कलर का होता है, उसके अंदर बहुत सारा रस होता है, उसके अंदर स्वाद होता है। तो शब्द जो है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। वो ऐसा प्रतिरूप मतलब एक स्वरूप उसका, जैसे मैं बोलूंगी तो एक स्वरूप आप क्रिएट करोगे। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है कि कैसा होगा। किसी भी वस्तु के बारे में मैं आपको बताऊं तो फिर वैसा आपको दिखेगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। और इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। अगर हम भगवान के विषय में बताते हैं जो भी शब्द कि भगवान का स्वरूप नीले मेघ के समान है, और भगवान की जो शरीर का जो सौंदर्य है वो कमल के फूल के जैसे, भगवान के नेत्र हैं, भगवान के बहुत ही सुंदर बिंबा फल जैसे, भगवान के काल हैं। तो जैसा जैसा मैं वर्णन हम करते हैं भगवान का, भगवान का पूर्ण रूप है। जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था, उन्होंने साक्षात देखा था, और शास्त्र में जो वर्णन किया है तो हमको कैसे सही सही दिख रहा होता है कि ऐसा ही भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में शंख चक्र गदा लेकर ना प्रकट होते हैं, घुंघराली अर्कें होती हैं, पीला पीतांबर पहनते हैं, मंद मंद मुस्कारे होते हैं। तो भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है। शब्द और रूप में जब हम भगवान के शब्दों में सराहना कर रहे होते हैं, भगवान का शब्दों में जब वर्णन कर रहे होते हैं, तो वो शब्द ही साक्षात भगवान का स्वरूप धारण करते हैं, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही तत्र अर्पिता। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां भगवान के नाम के अंदर डाल दी हैं। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शब्द उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा लेता है। ये प्रेम नाम के प्रति जब उत्पन्न हो जाए ना, तो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में भक्तों ये बहुत बहुत सरल है, लेकिन हम दुर्दैवमी दृश्यमी हा जनी ना अनुराग। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान के पवित्र नाम के प्रति वो आकर्षण वो प्रेम उत्पन्न होता नहीं है। लेकिन यदि एक बार नाम रूप में भगवान से प्यार हो जाए ना, तो फिर भगवान जिस तरह से गोपियों से मिलते थे और गोपियों को कितना आनंद होता था, उतना ही आनंद हमें भी आने लगे। लेकिन हमें क्या लगता है, जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो नींद आ रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे ये माला कंप्लीट हो तो मेरी जान छूटे। और वो जो रस चाहिए होता है ना नाम में, वो रस आ रहा नहीं होता है। लेकिन ये नाम साक्षात भगवान का स्वरूप है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना भगवान के नाम से, तब नींद उड़ जाती है। जैसे अगर बहुत ही समय से बिछड़ा हुआ प्रीतम किसी प्रेमिका से मिलता है, तो रात के 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, वो आपस में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, प्रेम कर उनको समय का कोई भान होता है कि इतनी देर हो गई है? वो तो बल्कि सोचते हैं कि एकांत में मुझे मेरे प्रीतम से मिलने दो। उसी तरह भक्त का प्रेम जब प्रगाढ़ होता जाता है, जब भगवान के प्रति जब आसक्ति बढ़ती जाती है ना, तो फिर ये भौतिक जो कठिनाइयां हैं, जो अवरोध हैं, जो निद्रा है, जो भूख है, वो प्यास है, वो सब समाप्त हो जाती है। याद नहीं रहता कि कुछ और भी कार्य है, मेरा कोई स्वरूप है जिसे मुझे संतुष्ट करना। बस ये कि प्रेमी से मिलने की जो संतुष्टता है वो सबसे आगे बढ़ जाती है। उसी तरह जैसे जैसे हमारा भगवान से प्रेम बढ़ जाता है ना, तो फिर साधना ही आनंद देने लगती है। अभी क्या हम साध्य मार्ग पर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। असल में क्या प्रॉब्लम है कि इतने समय से भगवान से प्रेम किया नहीं, करोड़ों जन्म हो गए, आदिकाल से अनादिकाल से जीव आत्मा कभी किसी जन्म में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में केवल भौतिक वस्तुओं के लिए घूम रही है। लेकिन वो सोच रही है, क्योंकि मिथ्या अहंकार है ना, उसको क्या लग रहा है, ये भूख कर आनंद आएगा। लेकिन अचानक से ये तो श्री प्रभुपाद जी जैसे महात्माओं की कृपा है, जो आज हमें ये पता चल गया है कि भौतिक वस्तुएं आनंद प्रदान नहीं करेंगी, बल्कि भगवत सानिध्य आनंद प्रदान करेगा। लेकिन पता हो जाना काफी नहीं है, धीरे 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 हमको बुद्धि के द्वारा अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी कॉन्शियसनेस को इस बात पर टिकाना है कि आनंद केवल भगवान नाम में है, केवल भगवान के सानिध्य में है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो भगवान का ध्वनि निरूपण है उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं, अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शब्द उच्चारण से मनुष्य तुरंत ही भगवान के सानिध्य का आनंद उठा लेता है और शब्द और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करते हैं, उसे शास्त्रों द्वारा अनुबोधित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तमसो माम ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर आने की जो यात्रा है उसमें साध्य और साधन चेंज नहीं होते हैं, वही रास्ता है नाम जप करते 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 नाम में प्रेम हो जाना। ये भगवान का नाम जो है, इसके अंदर भगवान की पूरी शक्ति है। जीवन में कभी कोई संकट आए, कभी कोई दुख आए, कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी कोई विपत्ति आए, तो ऐसा मत सोचना चाहिए कि अब ये विपत्ति को दूर करने के लिए मुझे और कोई साधन करना पड़ेगा। नहीं, उसी नाम को तीव्रता से, दृढ़ता से, पूर्ण विश्वास के साथ जपते जाना, जपते जाना, जपते जाना। तो कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा, कलयुग के कष्टों को दूर करने का और कोई कारण नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवान की पूरी शक्तियां इसके अंदर है। यूं समझो, जब आप नाम ले रहे हो ना, तो भगवान साक्षात अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके पास है। अब बताओ, भगवान के अतिरिक्त तो और कौन हो सकता है जो आपकी विपत्ति को दूर करे, आपके संकट को दूर करे, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, आपको आनंद प्रदान करे। और इस मिथ्या अहंकार से ऊपर उभरने का एक बहुत ही सुंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी तरीका बता रहे हैं कि जो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, किस रूप में, भगवान के नाम के स्वरूप में। जब वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उभर जाता है। आगे बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, नभसोथ विक्रमाणात् अभूत स्पर्श गुणो नीलः परान्वयाच्च शब्दवांश प्राण ओजसहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् असीदम्बोरसात्मकम् रूपवत्स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत्स्पर्शगुणो निलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजसहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्बोरसात्मकम् रूपवत्स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः शब्दार्थ नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत्स्पर्श गुणोनला नभ मतलब आकाश का अर्थ इस प्रकार विकुर्वाणात् मतलब रूपांतरण पहले आकाश आया और आकाश से रूपांतर होकर अभूत स्पर्श गुण अभूत मतलब उत्पन्न हुआ स्पर्श मतलब स्पर्श गुण यानी गुण अनिला अनिला मतलब वायु ठीक है उसके बाद परान्वयात् शब्दवाच्य प्राण ओजसहो बलम् परा का मतलब है कि पूर्ववृत्ति अर्थात पिछली अन्वयात यानी परंपरा से शब्दवान अर्थात ध्वनि से पूर्ण च भी प्राण यानी जीवन ओज इंद्रिय बोध सह मोटा बलम बलम का मतलब होता है बल उसके बाद वायु रपि विक्रमणात् काल कर्म स्वभावता वायु माना हवा वायु के अपि भी विक्रमणात् रूपांतरण से काल यानी समय कर्म पिछले कर्म स्वभावता स्वभाव के अनुसार उदप्य उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् उदपद्यत मतलब उत्पन्न हुआ तेजो यानी अग्नि वै ठीक से रूपवत् रूप के साथ स्पर्श स्पर्श शब्दवत् शब्द के साथ भी तेजस यानी अग्नि का तु यानी लेकिन तेजस तु विकुर्वाणात् आसीदम्बो रसात्मक तेज यानी अग्नि का तु लेकिन विकुर्वाणात् यानी जब रूपांतरित हो गया आसीत ऐसा हुआ अम्ब जल रसात्मकम रस से निर्मित और उसके बाद रूपवत् स्पर्शवाच्चाम्भो गोशवच्च परान्वता रूपवत् मतलब रूप के साथ स्पर्शवत् स्पर्श के साथ च अम्ब यानी जल गोशवत् ध्वनि के साथ च तथा पर पूर्व अन्वयात् परंपरा विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गंध गंधवानभूत अन्वयात् मतलब परंपरा से विशेष नाना रूप से तू लेकिन विक्रमणात् रूपांतरण से अम्बस यानी जल का गंधवान सुगंध सुगंधित और अभूत मतलब हो गया उसके बाद आखिर में बताया परान्वयात् रसस्पर्श शब्द रूप गुणान्विता। परन्वयत का मतलब होता है पर यानी पूर्व, अन्वयत मतलब परंपरा से, विशेष नाना रूप से तू, लेकिन विकर्णवाणात मतलब रूपांतरण। अम्बसा जल का, गंधवान यानी सुगंधित, अभूत अभूत यानी हो गया, पर अन्वयत यानी पूर्व परंपरा से, रस यानी रस, स्पर्श यानी स्पर्श, शब्द यानी ध्वनि, रूप गुण अन्वयत यानी गुणात्मक रूप से। अनुवाद देखिए, चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमयी प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस शब्द स्पर्श तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास, जैसे विकास बढ़ता है एडवांस होता जाता है, ठीक है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। पहले हम समझो एक शब्द सुनते हैं, फिर उस शब्द को हमें स्पर्श फील होता है, ठीक है, जब तक स्पर्श हमें तब तक फील नहीं होता, और जब स्पर्श फील होता है तो फिर उसका कोई ना कोई रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि ये ही जितने ये महातत्व है ना, जो उसके साथ साथ जैसे इंद्रियां बनती है, और इंद्रियों से जो इंद्रियों के विषय है ना वो बनते हैं, यहाँ पर पता स्वाद और गंध भी उत्पन्न होता है, वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात भगवान होते हैं, जो महत्त्व के कारण जलशयाई महाविष्णु हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है, और भगवद्गीता 10.8 में भी इसी की पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर और सरल बात बता रहे हैं कि बलि महतत्व से जो इंद्रियों के विषय हैं वो उत्पन्न होते हैं, पहले इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे विकास हो रहा है कार्मिक, लेकिन समझने की बात तो यही है ना कि मूल कारण कौन है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है समस्त कारणों के कारण, तो कारणों के कारण कौन है, पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने कारण दक्षाय विष्णु को उत्पन्न किया या एक्सपेंड किया, और इस तरह से कारण दक्षाय विष्णु जो जल में है वो महातत्व के कारण है, उन्हीं से ब्रह्मांड निकलते हैं और ब्रह्मांड के अंदर सारी वस्तुएं इसलिए वास्तव में हमें ये देखना है कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है, जो कि यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवद गीता में बताया गया है, ब्रह्म संहिता में बताया है, ईश्वर परम कृष्ण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अभी पृथ्वी में सारे होते हैं, मतलब शब्द है और है ना स्पर्श है, गंध है, दृश्य है, तो पृथ्वी के अंदर सारे हैं, ठीक है। आकाश में सिर्फ और सिर्फ शब्द है, वायु के अंदर शब्द भी है, आवाज भी आती है और वो हमें स्पर्श भी फील कराती है। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं, तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतएव पृथ्वी पर जीवन का की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन से तत्वों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये बताया जाता है पृथ्वी में सारे गुण हैं, और उसके बाद अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है, शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मतलब जो वायु है, हमारे शरीर में 9 प्रकार की वायु होती है, तो यहाँ पर जो बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस जीवन का जो मूलतः वायु के मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। अभी जो हमारा जीवन है इस भौतिक जगत में, उसका मूल तत्व क्या है? वायु। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं शारीरिक रोग जो होते हैं जीवों को के भौतिक शरीर के भीतर वायु के विकार आ जाने से होते हैं। वायु जो हमारे अंदर है उसमें जब विकार आ जाते हैं, चेंजिंग आ जाते हैं, तो फिर हमारा जो शरीर है वो रोगी होने लगता है। और मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव योगिक व्यवसाय वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद है। अभी मानसिक रोग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे शरीर की जो वायु है वो विशेष रूप से कुपित हो जाती है, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से होता है। तो योगा, यहाँ पर योगिक क्रियाएं जो की जाती हैं वो स्पेशली हमारे शरीर के वायु को बैलेंस बनाने के लिए होती है, और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्रायः ना के बराबर हो जाते हैं। जब हम ऐसे व्यायाम करते हैं योगाभ्यास से, तो शरीर के रोग खत्म होते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ जाती है, और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्य रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है। जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं कि जो योगी होते हैं वो ध्यान करते हैं कि भाई कृष्ण पक्ष में नहीं शुक्ल पक्ष में मृत्यु आनी चाहिए और उत्तरायण समय होना चाहिए। तो ये जो योगी होते हैं ना, वो मृत्यु को अपने जो अपने हवा है ना, सांसें हैं, उनके जरिए से मृत्यु पर भी अंकुश लगा सकते हैं, और जिस समय पर वही चाहते हैं उसी समय पर उनके प्राण जो है वो देह से निकलते हैं। किंतु तभी जब वह अपने को उपर्युक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले ही ये भौतिक तत्व इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो भक्ति योगी है वो सबसे महान होता है। सब जितने भी योगी हैं, सारे योगियों से बढ़कर है। ईश्वर प्रभुपाद जी नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 6th अध्याय में बताते हुए कहते योगी नाम अपि सर्वेशम मद गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्त तमामत। भगवान कहते हैं जो योगी नाम अपि सर्वेशम, जो सारे योगियों में हर तरह से मद गते नांतरात्मना अपनी अंतर आत्मा में केवल मेरा ध्यान करता है, वो ही सबसे ज्यादा महान है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि उसे अपनी भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर है, क्योंकि उसे अपनी भक्ति में ही सेवा के बल पर भौतिक आकार से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबों की नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। तो जो योग बाकी योग साधना की जाती है जो छोटी मोटी, वो सब भले शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या और कुछ शरीर को रोग ना हो या फिर मृत्यु समय पे आए, इसके लिए तो सही है ये सब योग अभ्यास। अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा अलगिमा ये सब। लेकिन जो भक्ति योगी है ना, वो सबसे ज्यादा महान क्यों है? क्योंकि वो भौतिक आकाश से परे वाले लोग को भेजा जाता है, मतलब भौतिक आकाश से निकल जाता है, आगे निकलता है आध्यात्मिक जगत में और सबों के नियंता भगवान की परम इच्छा से। जिस जिस तरह से उसने भगवान की भक्ति की होगी उसी स्वरूप में, भगवान के उसी स्वरूप के लोक में उसको वैकुंठ में किसी भी लोक में रखा जाता है। तो वैकुंठ जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जिस जिस भगवान के अवतार की आप भक्ति करते हो, जैसे नरसिंह अवतार, वराह, वामन, मत्स्य, कश्यप, भगवान ने विभिन्न अवतार लिए हैं और जीव जब इनमें से किसी भी भगवान के स्वरूप की अच्छे से भक्ति करता है तो फिर उसको वैकुंठ में भेज दिया जाता है। जैसे अगर कोई भगवान श्री राम की भक्ति करता है तो भगवान श्री राम का वैकुंठ है साकेत धाम, तो उसमें उसको जाना होता है। तो इसी तरह से भगवान के किसी भी रूप की भक्ति करके आप इस कुंठा यानी दुखों भरे जीवन से, दुखों भरे संसार से पार होकर वैकुंठ में जहां पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं, उसमें पहुंच सकते हो। लेकिन जो वैकुंठ से भी परे है वो है गौलोक वृंदावन धाम, क्योंकि बाकी जितने भी लोक हैं वहां पर भगवान का स्वरूप कैसा है? चार भुजाओं वाला विष्णु, और उसी स्वरूप में मतलब भगवान की पूजा होती है। लेकिन जो गौलोक वृंदावन धाम है वहां पर भगवान की जो पूजा होती है वो राजा की तरह भगवान की पूजा नहीं की जाती और परम ऐश्वर्य के साथ नहीं। गौलोक वृंदावन धाम में भगवान साधारण बालकों की तरह गोप ग्वालों के साथ रहते हैं और मैया यशोदा उनके साथ प्रेम करती। तो जो गोलोक वृंदावन में जाते ना तो भगवान को अपना प्रीतम बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं या फिर इसी तरह से किसी भगवान की सेवा में रहते हैं। तो यहाँ जो ये बात बताने की है कि ठीक है, आपको जैसा भी भगवान का स्वरूप पसंद लगता है उसकी आप पूजा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए बताया जाता है कि जो महातत्व है कि अग्नि से, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ये सब प्राप्त होते हैं और भले कुछ भी हो है तो ये सब भौतिक ना, कैसे क्या प्राप्त हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कुछ भी संसार में है वो भगवान से बना है। भगवान से बना है तो फिर भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। ये भौतिक तत्वों को जितना भी हम समझ लें भले, लेकिन वास्तविक स्थिति तो क्या है, मैं भगवान को समझूं और मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं, और उसका एक ही तरीका श्री प्रभुपाद जी यहां बताया और शास्त्रों में बताया गया, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को रटते जाएंगे अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होगी, अवश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। जो इच्छाएं हमें भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने में रुकावटें बन रही हैं, वो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम विकसित होने लगेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि महामंत्र के प्रति मेरी श्रद्धा, प्रेम और आस्था बढ़े और मैं बड़े ही प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकूं। हरे कृष्ण।